वहाँ तो सब पवित्र रहते, परंतु पार्ट सबका अलग अलग। पवित्र सब कहाँ रहते हैं? है? जो बाप का धाम है उस धाम में तो सब पवित्र रहते हैं, वहाँ कोई अपवित्र नहीं होता। परंतु पार्ट सबका अलग अलग हो जाता है। क्यों अलग अलग पार्ट क्यों हो जाता है? ये बात भी बुद्धि में रखो कि जब बाप के घर में सब पवित्र आत्माएं रहती हैं, फिर उनका पार्ट अलग अलग क्यों हो जाता है? झाड़ भी बुद्धि में रखना है। सत्य गुरु से कलयुग अंत तक ये बात ही बताते। ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते, दादा माने ब्रह्मा। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते। तो बाप बताते हैं, दादा नहीं बताते। एक सतगुरु है जो सबकी सदगति करते हैं। तो वो बाप और दादा, ये दो शब्द हुए, दो आत्माएं हुई जिनकी ओर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दादा तो हुआ साकार, वो तो ठीक। फिर बाप बिल्लू, एक ही सतगुरु है। सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, सतगुरु भी दलाल के रूप में मिलता है, बीच में मीडिया का रूप धारण करता है। सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। अकाल माने जिसको कोई काल खा न सके। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। तो अकाल मूर्त किसके लिए कहा गया? आत्मा के लिए। आत्मा को तो काल खाता ही नहीं, फिर अकाल मूर्त कहना ही बेकार। काल नहीं खाता का मतलब शरीर में रहते हुए भी काल की इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे खा सके। शरीर छोड़ना न छोड़ना उसके अपने हाथ में। तो सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड आदि करते हैं भक्ति मार्ग का, सो देखो कितना है। ये रुन्ने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाता है तो खुद ही फंस जाते। ये भी ड्रामा की नूड है कि फंसे हुए को कोई निकालने जाए वो भी फंस जाए। तो नई बात नहीं है, तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है ये सारा ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण बनते हैं। नर से नारायण कैसे बनते हैं? बेहद के बाप से डायरेक्ट राजयोग सीख कर नर से नारायण बनते हैं। बाकी नर से नारायण नहीं बनते। जो बेहद के बाप से डायरेक्ट राजयोग नहीं सीखते, कोई और बिचौलिया बीच में आ जाता है। तो नर से नारायण नहीं बनते तो क्या बनते हैं? नर से प्रिंस बन जाते हैं, नारी से प्रिंस बन सकते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। क्या नशा रहना चाहिए कि हमें डायरेक्ट बाप से राजयोग नहीं सीखते, उनके डायरेक्शन पर चल पड़ते। तो उनको प्रिंस प्रिंसेस बनना पड़ता है। वेद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में ही आते, और किसी देश में नहीं आते। भारत ही अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि बाप भारत में आते हैं, अविनाशी वर्षा देने वाला, शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है। कोई लौकिक बाप की महिमा नहीं है, न लौकिक देहद के बाप की महिमा है और न लौकिक देहद के बाप की महिमा है। महिमा किसकी है? पारलौकिक बाप की। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। दुख हरता सुख करता कौन है? वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। सन्मुख बैठे हो तो जो सन्मुख बैठे हैं उनका पूरा ही 100% दुख हरता और सुख करता है, और सन्मुख नहीं बैठे हैं, जो उस बाप के सन्मुख नहीं बैठते हैं तो उनका पूरा दुख नहीं हरा जाता, कुछ न कुछ कलाओं में कमती हो जाएगा, कुछ न कुछ जन्म भी कम हो जाता है। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ बुद्धि योग लगाएंगे? बुद्धि योग में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है। यहाँ तो बूढ़ा तन नहीं है, बाल तो सफेद हो गए, तो बाल सफेद बहुतों से हो जाते हैं। फिर है? हाँ, जब सारी बातें बेहद की है तो बूढ़ापन भी बेहद का है। बेहद माना बूढ़ा, माना अनुभवी। जो जितना ज्यादा अनुभवी वो उतना ही बूढ़ा। जैसे बाबा कहते हैं जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, तो ज्ञान भी तो अनुभव की चीज है ना। तो बड़े का अर्थ कोई हद का नहीं है, बड़े का अर्थ भी बेहद में। मैं साधारण और बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। क्यों? परमात्मा होकर ड्रामा के बंधन में क्यों बांधा हुआ है? हम मनुष्य आत्मा है, बंधन में बंधे वो तो अच्छी बात, ठीक बात है। परमात्मा ड्रामा के बंधन में क्यों बांधा हुआ है? आत्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा को भी सृष्टि पर आना ही पड़ता है। तुम मेरी कितनी गिलानी करते हो? मैं तुम्हारे लिए बंधन में बंधता हूँ। मैं इतना कल्याण करता हूँ कि मैं भी बंधन में तुम्हारी तरह आ जाता हूँ इस शक्ति कहते थे बंधन में, और तुम मेरी ग्लानी करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ, तुम ग्लानी करते हो और मैं तुमको गायन योगी बनाता हूँ, पूजनीय बनाता हूँ। ये कल की बात है। तुम कितनी पूजा करते थे? तुमको अपना राजभाग दिया और वो सब तुमने गवाई दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि ये विश्व के मालिक बनने वाले ये है दैवी गुण वाले देवता है तो मनुष्य 80 या 100 फुट लंबे तो नहीं है जो इनकी इतनी महिमा है। ऐसे तो नहीं कि उनों की आयु बड़ी है इसलिए छत्ते जितने बड़े होंगे। पांडवों के चित्र छत्ते इतने बड़े बनाए जाते हैं तो ये क्यों बनाए जाते हैं? उनकी बुद्धि विशाल होती है, विशाल बुद्धि में विशाल पार्ट बजाने वाला परमात्मा अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाता है। कलयुग में तो तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएंगे जो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर क्या करते रहते हैं है? इधर हॉस्पिटल खोलो, उधर हॉस्पिटल खोलो, इन डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिलवाओ, उनको ट्रेनिंग दिलवाओ, यही करते रहेंगे। डॉक्टर बढ़ाते रहेंगे, हॉस्पिटल बढ़ाते रहेंगे और बीमारियां भी बढ़ती रहेंगी है? तो बाप कहते हैं हम ऐसी युक्ति बताते हैं जो तुम 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान वाच अपने को आत्मा समझ मान एक याद करो क्या? ये लास्ट दवाई है, इसके बाद फिर कोई दवाई नहीं है। मुझे याद करोगे तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। मुझे भी कैसे, मुझे कैसे को याद करो, माम एकम मुझे एक को याद करो, अब विचारी याद करो। अगर दूसरे दूसरे आधार बनाए हुए हैं तो अहंकार जरूर आएगा क्या? अगर दूसरे आधार बनाए हुए हैं तो कुछ न कुछ अहंकार आएगा, अरे ये एक डॉक्टर नहीं तो दूसरा डॉक्टर ले लेंगे, तो डॉक्टरों की कमी है क्या? तो बात नहीं बनेगी। क्यों बात नहीं बनेगी? क्योंकि परमात्मा अहंकारियों को नहीं छोड़ता, कामी भी माफ, कैसा भी कामी हो, महाकामी हो, अजामिल जैसा महापापी क्यों न हो। कामी इस्लामियों ने कितना समय राज्य किया, 2500 वर्ष के पीरियड में सबसे जाती तो इस्लामियों ने राज्य किया इस धरती पर। क्यों? काम तो महाशत्रु है भारतवासियों का, फिर ऐसों को इतनी राजाई कैसे मिल गई? बल काम महाशत्रु है, लेकिन झाड़ के चित्र में इब्राहिम का मुख किस तरफ है? भारत की तरफ। और दूसरे जो धर्म पिता हैं वो सामने अड़े हुए बैठे हैं, अहंकार में उनका चित्रण किया गया है। सिर्फ एक इब्राहिम है जो सन्मुख होकर बैठा हुआ है। आधार मूर्त में आ जाइए, आधार मूर्त में इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? सेकंड धर्म पिता किसमें प्रवेश करता है? सेकंड नारायण। सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा का वर्षा भाइयों में किसने लिया? विश्व किशोर भाऊ, तो बाबा का बहुत वफादार बच्चा, बाबा सारी एकी की सारी कारोबार उसको सौंप के रहते। वो ज्ञानी नहीं था, उसमें ज्ञान का कोई अहंकार नहीं था, बल कैसा भी था लेकिन बाबा का वफादार बच्चा। तो क्या प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई? कि ब्रह्मा बाबा का वारसदार बन जाता है। तो यहाँ वारसदार बना और वहाँ इब्राहिम का आधार बन गया। लेकिन ये प्राप्ति किस आधार पर हुई? जब काम महाशत्रु ऐसे बताई दिया। सबसे बड़ी बात है कि जिसकी सेवा करे, जिसकी सेवा के लिए जीवन अर्पण किया हो, तो निरहंकारी होना बहुत जरूरी। सेवा का धर्म ये ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मणों का काम आर्डर चलाना नहीं है। ब्राह्मण, उनकी कोई डायनेस्टी नहीं चलती है राजाई की। ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? कोई कुछ भी कहे, कोई क्या भी बोले, उल्टा बोले सीधा बोले, लेकिन ब्राह्मण क्या करे, सेवा करे निरहंकारी होकर, इसी में उनकी भलाई। अगर अहंकार आया किसी प्रकार का तो नीचे गिर, जैसे प्रदर्शनी अंक के चित्र में दिखाया है, लास्ट चित्र में क्या दिखाया है, कलयुग से लेकर के सतयुग तक की लंबी मंजिल दिखाई गई है, मोड़ लेती हुई, काम क्रोध लोभ मोह पांच विकारों से पसार होते हुए अंत में कहां जाके गिरते हैं, अहंकार के पांचवी मार से जाकर के गिर जाते हैं। तो परमात्मा के पास, वो ईश्वर बाप के पास सब माफ हैं, सब प्रकार के विकारी माफ हैं, सब प्रकार के पापी माफ हैं, लेकिन एक अहंकारी माफ नहीं होता। अहंकारी धर्म कौन सा है, क्रिश्चियन धर्म में भी दो फेरे हैं, एक है क्रोधी और एक है अहंकारी। तो क्रोधियों को फिर भी राजाई बहुत कुछ मिली, भारतवर्ष में 100-200 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया दिल्ली के तख्ते पर, सब धर्मों ने राज्य किया दिल्ली के तख्ते पर, लेकिन अब तक भी दिल्ली के तख्ते पर कम्युनिज्म का राज्य माना, अहंकारी रशियंस का राज्य अभी तक नहीं है, आने की संभावना है जरूर, क्योंकि दिल्ली का तख्ता ही ऐसा है जिस पर कुछ न कुछ राज्य सब करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन राजाई चल नहीं पाती। एक रशियंस का रूप ही ऐसा है, जहाँ राजाएं हुए तो थे लेकिन उस समय कम्युनिज्म नहीं था, और जब से कम्युनिज्म आया तब से राजाओं को कत्लेआम करवा दिया गया, मतलब कि अहंकारी जो होते हैं वो राजा ही पसंद नहीं करते। परमात्मा की दी हुई चीज वो उनको पसंद नहीं है, तो जिसको पसंद ही नहीं है वो परमात्मा उसको देगा ही क्यों, और डिस्ट्रक्शन करने वालों को देगा या कंस्ट्रक्शन करने वालों को देगा, परमात्मा बाप कंस्ट्रक्शन करने वालों को देता है, डिस्ट्रक्शन करने वालों को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीवित है तब तक रोटी दाल मिल जाएगी, बाकी कोई प्राप्ति नहीं। तो 10 धर्म झाड़ में दिखाए गए हैं 10 जड़ें, उनमें से एक ही जड़ ऐसी है जो देखने में तो बैठी है परमात्मा बाप के पास, लेकिन प्राप्ति प्राप्ति कुछ नहीं करती, राजाई की प्राप्ति नहीं करती। और धर्म सब राजा ही प्राप्त कर जाते हैं, सब धर्मों में राजाई के लिए, लेकिन अहंकारी रशियंस को कोई राजाई नहीं मिलती। लेकिन फिर वो जड़ पास में क्यों बैठी हुई दिखाई गई है, बाप के बिल्कुल बाजू में है? ऐसा क्यों है, जैसे लौकिक दुनिया में होता है, बाप होता है, बड़े बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, जानता है कि ये समर्थ हो गए कमाई खाए लेंगे, लेकिन छोटा बच्चा तो छोटा है, समझदार नहीं है उतना, तो उस बच्चे के ऊपर विशेष रहम आता है। छोटे बच्चे के ऊपर माँ बाप को बहुत बहुत प्यार होता है, तो उसको नजदीक बैठाया हुआ है माना, बाप के पास अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो कम से कम जब तक इस जन्म में बाप का है तब तक तो सुख और शांति में रहे, अगर चाहे तो मतलब क्या हुआ कि बाप अहंकारियों को वर्षा नहीं देता, सिर्फ अल्पकाल का वर्षा मिलता है, सदाकाल का वर्षा नहीं मिलता। और वैसे भी देखा जाए तो ज्यादा बड़ा बच्चा बिगड़ता है या छोटा बच्चा है, छोटा सबसे खोटा हो जाता है मोस्टली, ये देखने में आता है, क्योंकि उसको लाड़ प्यार जाति मिलता है। और जो यहाँ लाड़ प्यार मान मर्तबा ज्यादा ले लेगा संगम युग में, तो भविष्य के 21 जन्मों में फट हो जाता है, ये यहाँ भी ये नियम लागू होता है। तो बताया मां एकम याद करो, किसको याद करो, मुझे एक को याद करो, तो तुम पावन हेल्दी बन जाएंगे, हम इस बात की गारंटी करते हैं। मेरा तो एक, दूसरा दूसरा अनुकूल, ऐसे निरहंकारी हो जाओ, ऐसे बुद्धि सरेंडर बुद्धि हो जाए एक के प्रति। योगी पवित्र होते तो उनकी आयु भी बड़ी होती है। जब एक के ही बन के रहेंगे तो अभी विचारी हुए, और अभी विचारी होंगे तो आयु जरूर। राधा कृष्ण की आयु कितनी लंबी होती है? 150 वर्ष। कारण क्या? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती, वहाँ विचारी दृष्टि बनती नहीं। तो दृष्टि मात्र भी अपवित्र नहीं होते। अभी तुम राजयोगी ऋषि हो, ये सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। कौन से सन्यासी? जो घरघात छोड़ने वाले हैं, चाहे हद का घरघात हो और चाहे बेहद बाप का घरघात हो, जो छोड़ करके भागते हैं वो राजयोग नहीं सिखला सकते, क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग के हैं, वो प्रवृत्ति को मानते नहीं। तो जो प्रवृत्ति कोई नहीं मानने वाले हैं, निवृत्ति में जाने वाले हैं, वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे? वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, तो किसको गुरु बना लेते? वो गंगा को गुरु बनाते, कहते हैं वहां जाकर दान करो, ईश्वर अर्थ दान पुण्य न करो, डायरेक्ट भगवान को जाकर न दो, किसको दो? ज्ञान गंगाओं को जाकर दो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, गंगा में जो कुछ चढ़ाएंगे वो कहां जाएगा? है? जाएगा तो सागर में, पानी में तो बहके जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है किनारों पर छूट जाए, या ये भी हो सकता है कि गंगा का कनेक्शन सागर से न हो। सागर से न हो ये कैसे हो सकता है? गंगा से कभी नहरें निकाल दी जाती है तो नहरों का कनेक्शन कोई सागर से नहीं रहता, वो फिर आर्टिफिशियल चीज हो गई, दूसरों के चलाए अपने रास्ते को मोड़ दिया, मुड़ गया। तो गंगा में दान नहीं किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं और पंडित लोग निकाल लेते हैं। जो वहां के पुजारी पंडित हैं, गंगा के किनारे बैठने वाले, वो ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो क्या? तुम गंगा द्वारा पावन नहीं बन रहे हो, तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। गंगा में स्नान करके नहीं, लेकिन ज्ञान सागर में स्नान करके पावन बन रहे हो। तुम बाप को देते क्या हो? कुछ देते हो क्या? नहीं, बाप तो खुद ही दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर से गरीबों को देते थे, वो या पतितों को देते थे, गरीब क्यों बने? देवताएं गरीब होते हैं क्या? देवताएं तो गरीब नहीं होते, लेकिन जब पतित बनते हैं तो गरीब होते हैं। तो तुम पतितों को देते थे, तुम भी पतित और लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, इसलिए क्योंकि तुम जो कुछ देते हो किसको देते हो? एवर प्योर बाप को देते हो, पारलौकिक बाप को देते हो। बुद्धि में ये रहता है कि हम पारलौकिक बाप को दे रहे हैं। वो पतित और पतितों को ही दान करते हैं, कोई कुमारी को दान देते हैं तो कुमारी को आकर का माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, कुमारी को दक्षिणा भी देते हैं, फिर बाद में कुमारी को दक्षिणा कब तक देते हैं? जब तक शादी नहीं होती है, जब तक वो किसी मनुष्य के अधीन नहीं होती है, तब तक वो पूजी रहती है, दान लेने योग्य है, और जब किसी मनुष्य का आधार ले लेती है तब क्या होता है, शादी के बाद बर्बादी हो जाती। तो ये ड्रामा में नूड है क्या? क्या नूड है, है? कि ऐसी स्टेज में रहना जिसमें सब माथा टेके, सब मस्तक झुकाए पूज्य आराध्य देवी के रूप में, और एक ऐसी भी स्टेज होती है कि सबके जाकर पाओ, सबके जाकर पाओ छूना पड़े। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कुंवारी कन्या और अदर कुंवारी कन्या, ये शूटिंग कहाँ होती है? ड्रामा में नूड ही ऐसी है, फिर भी ये रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ नूढ़ा हुआ है, कतिपय समाचार बाप बताते हैं, और भक्ति मार्ग द्वापर कलयुग का भी समाचार बताते हैं, वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। वहाँ अभिविचारी होते हैं और यहाँ विविचारी बन जाते हैं रावण का। अब तुम बच्चों को समझ पड़ गई है, पहले तो बेसमझ थे, 100% बेसमझ है। इसमें भी 100% बेसमझ उनको कहा जाता है जो सर्वव्यापी का ज्ञान सुनाते। क्या 100% बेसमझ किनको? जिनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि परमात्मा एक ही तन में व्यापक होकर आता है, उस एक के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है और दुनिया में कोई दूसरा कल्याणकारी नहीं है, बुद्धि में से श्रद्धा उखड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, सर्वव्यापी का ज्ञान फैल जाता है, सब सब में आता है। ये सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ से निकला है? परमात्मा सर्वव्यापी है, ये सर्वव्यापी का ज्ञान कहाँ से निकला है? देहधारी धर्मगुरुओं से। देहधारी धर्मगुरु में अव्वल नंबर धर्मगुरु कौन है? देहधारी धर्मगुरुओं में फर्स्ट नंबर धर्मगुरु कौन है? सेकंड नारायण और फर्स्ट नारायण, सतयुग का फर्स्ट नारायण या संगम युग का नारायण है? अरे चुप, सतयुग का सेकंड नारायण, फर्स्ट नंबर धर्मगुरु, उससे बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं होता, इससे बड़ा गुरु संसार में मनुष्य गुरु कोई नहीं होता है? कौन होता? प्रजापिता। प्रजापिता तो दुनिया में प्रत्यक्ष ही तब होता है जब परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करे। अगर परमात्मा बाप प्रवेश न करे तो प्रजापिता प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। बड़ा गुरु कौन हुआ, सबसे बड़ा? ब्रह्मा। तो फर्स्ट नारायण हो गया सत्य का सबसे बड़ा गुरु। फर्स्ट नारायण वाली आत्मा सबसे बड़े गुरु बनती है। नारायण तो सत्युग में नारायण होता है, वहां तो गुरु बनने की बात ही नहीं। लेकिन वही आत्मा कलयुग के अंत में जब ब्रह्मा का पाठ बने, एक है प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा है सिर्फ ब्रह्मा और तीसरा है टाइटनधारी ब्रह्मा, तो सबसे बड़ा गुरु कौन? देहधारी मनुष्य गुरु। निराकार बाप जो निराकारी स्टेज वाला है, वो तो हो गया सतगुरु, उसकी बात नहीं। सबसे बड़ा देहधारी धर्म गुरु कौन है? अगर आदि ब्रह्मा गुरु होगा देहधारी गुरु, तो जो चैतन्यधारी होगा वो तो स्वतः ही हो जाएगा, चैतन्यधारी भी गुरु हो जाएगा। और आदि ब्रह्मा वो भी मनुष्य गुरु हुआ, यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? अव्यक्तवाणी में किसका नाम पहले लिया? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, पहला नंबर किसका दे दिया? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने में पहला अगुआ बना ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मा का तो श्रेष्ठ पार्ट है, फिर विनाश वाला प्रज्वलित करने में आगे क्यों गया? इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजे को याद न करो। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा की बात नहीं माननी, बात ब्रह्मा की भी माननी है, माँ के भी डायरेक्शन पर चलना है, लेकिन याद मुझे एक को करो तो कल्याण ही कल्याण है। याद किसी और दूसरे की नहीं करनी है। अगर दूसरे को याद किया तो याद कैसी हो जाएगी? व्यभिचारी याद हो जाएगी। तो बोला कि सर्वव्यापी का ज्ञान भारत में ही है और गुरु कहाँ होते हैं? जाति भारत में ही। ये कहाँ से निकला सर्वव्यापी का ज्ञान? है भारत में भी, भारत में तो ढेर है भारतवासी, उनमें भी मुख्य कौन, जहाँ से ये ज्ञान निकला? गीता से। गीता को माता कहा जाता है, ये मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई जो गीता होती है उसमें से ये ज्ञान निकलता है। कौन सा ज्ञान? परमात्मा सर्वव्यापी। अब गीता कोई भगवान ने तो नहीं गाई न लिखी, कौन सी गीता? जो भक्ति मार्ग की गीता, जिसमें गीता का भगवान कौन बनाए देते हैं? कृष्ण। ये गीता में छप जाता है। क्या छप जाता है? दिलो दिमाग में ना? हाँ, पिताश्री, यानी गीता का भगवान कृष्ण वाली सोल है, वो ही भगवान का पार्ट है, बाकी कोई दूसरा भगवान का पार्ट नहीं हो सकता। गीता लिखी है मनुष्यों ने, ऐसी गीता तो मनुष्यों ने लिखी है जिसमें कृष्ण को भगवान बनाए दिया है। सब शास्त्र है भक्ति मार्ग, उनसे मेरे को कोई पाता नहीं है। उन भक्ति मार्ग के शास्त्रों से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं जब आता हूँ तभी आकर के सदगति करता हूँ सभी की। माना शास्त्र चाहे गीता ही क्यों न हो, लेकिन गीता शास्त्र से किसी की सदगति नहीं हो सकती। कोई कहे कि गीता माता से हमारी सदगति हो जाएगी, गीता माता भी सदगति नहीं कर सकती और गंगा मैया भी सदगति नहीं कर सकती। और मैं एक ही बार आकर के पुराने को नया बनाता हूँ, बार बार नहीं। मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ और साहूकारों को गरीब बना देता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते। कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं और ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो, तुम बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ बाप का है। इसमें बड़ा सयान पाना चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो गोया यज्ञ से खाते हो, कब कहा जाए कि यज्ञ से खाते हो? जब ट्रस्टी हो जाते हो कि ये सब कुछ बाप का है, बाप के यज्ञ में ही लगाना है। ये गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला भगवान की है। क्योंकि तुम इस यज्ञ के हो, सब कुछ यज्ञ का हो गया, घर में भी ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, कब कहा जाए शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को कुछ लेखा जोखा हिसाब किताब रखना होता है कि नहीं? ऐसे ही अजर्रा चलता है, है? हाँ, ट्रस्टी को हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो अगर सारा पोता मेल धन का, तन का, संबंधियों का सारा पोता मेल बाप को देते हो तो तुम ट्रस्टी हो, क्योंकि हिसाब किताब सारा पहुंचता है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ऐसे नहीं हम अपने घर का खाते हैं या अपना कमाया हुआ खाते हैं, किसी का नहीं खाते, ये अहंकार की बात नहीं रहती। परंतु पूरा निश्चय चाहिए, निश्चय में अगर गड़बड़ हुई तो फिर हरिश्चंद्र का मिसाल देते। क्या मिसाल देते हैं? तन अर्पण किया और फिर तन वापस लिया, परीक्षा तो हर प्रकार की होगी। तन किसका है? तन अर्पण किया तो है किसका? शिव बाबा का। वो शिव बाबा तन को रखे या खलास कर दे? जिम्मेवार कौन? बाप। उसको काम लेना होगा तो रखेगा, नहीं लेना होगा नहीं रखेगा। तुमको मोह क्यों? अगर मोह आया, निश्चय में गड़बड़ हुई तो मोह आएगा तो खलास। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? हरिश्चंद्र का क्या मिसाल है? निश्चय में क्या गड़बड़ हो गई हरिश्चंद्र के? सब कुछ देने के बाद कहता है चाबी लाओ, खजाने में से निकाल के दे दे। मतलब इसका क्या हुआ कि सब कुछ दे दिया और फिर वापस कर लिया तो क्या बनना पड़ा? चांडाल। देने के बाद अगर कोई वापस करता है तो क्या बनता है? चांडाल। चाहे तन अर्पण करे, अपना तन अर्पण करे, अपने बीवी बाल बच्चों का तन अर्पण करे, उनके ऊपर अधिकार तो है ना, तो वो तन किसका हुआ? बीवी बाल बच्चों का भी तन किसका हुआ? जिसका अधिकार है उसी का हुआ ना। तो तन मन अथवा धन अथवा समय और संबंध और संपर्क जो सब कुछ अर्पण कर चुका, संपूर्ण समर्पण हो चुका, तो वो अगर दे करके वापस मांगता है तो कौन सी लिस्ट में जाता है? चांडाल की लिस्ट में जाता है। तो कहे अच्छा हम हमेशा के लिए नहीं मांगते, थोड़े टाइम के लिए हमें दे दो, हमें थोड़े टाइम के लिए काम निकालना है, तो भी वापस लेना तो हुआ ना। हमेशा के लिए वापस ना सही, लेकिन उधार मांगना तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकर के वापस लेना हुआ ना। तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मतलब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। बाबा को तो हर तरह की पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। मैं गरीब निवाज हूँ क्या? गरीब निवाज माने गरीबों के लिए आता हूँ, गरीबों को ही देता हूँ। गीत है ना, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? वो गरीबों को कोई पूछता नहीं था, अब बाप गरीबों को पूछने वाला गरीब निवास आया हुआ। आधा कल्प भक्ति में याद किया, आखिर आकर के मिल गया। अभी भक्ति मुर्दाबाद और ज्ञान जिंदाबाद में। क्या कहा? भक्ति में तो सिर्फ गाते रहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन प्रैक्टिकल में होता ही नहीं। परमात्मा भी प्रैक्टिकल में नहीं होता, और तन मन धन प्रैक्टिकल में परमात्मा को देते भी नहीं। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल है। देने वाला भी प्रैक्टिकल में देता है और लेने वाला भी प्रैक्टिकल में लेता है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। लेने वाला अभी तो ऊपर का, वो तो देने वाला है, दाता है, फिर लेने वाला कहाँ से बन गया है? अभी अभी तो वाणी में बोला कि मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों से कुछ लेता हूँ क्या? नहीं, ये पहली लाइन में लिखा हुआ। तो जब दाता है तो लेता कहाँ से हो गया है? मतलब लेता है, लेने वाला भी है, दाता नहीं है। दाता कैसे? या तो दाता है या फिर लेता है, है? विकारों को लेता, तन मन धन तो नहीं लेता है ना। चलो शुक्र हुआ, क्यों नहीं लेगा, बीवी बीवी वाले बच्चों को तो नहीं ले लेगा है? हाँ, ट्रस्टी बनने का मतलब है कि परमात्मा बाप को जो कुछ दिया तो परमात्मा बाप कहते मैं तो दाता हूँ, इस जन्म का इस जन्म में भी वापस करूँगा सब। क्या ये गारंटी है कि इस जन्म में जो कुछ तुम्हारा लूंगा? ये ऐसी अविनाशी बैंक है कि इस जन्म में भी तुम्हारा वापस करेगा और साथ साथ 21 जन्मों का भी, हाँ 21 जन्मों के लिए भी देगा। इतना बड़ा इंटरेस्ट तो और कोई दे नहीं सकता। तो दाता हुआ या लेता हुआ? दाता हुआ। बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो क्या बैंक लेती है? बैंक लेती थोड़ी है, जो जमा किया वो तो अमानत हो गई, तुम्हारी अमानत तुमको वापस। बाप पारलौकिक बाप है तो क्या परम नाम में ले जाएगा? परम नाम में तो कुछ वापस ले नहीं जाएगा। तो अभी भक्ति मुर्दाबाद और ज्ञान जिंदाबाद होना। अब अंधश्रद्धा की बात खलास हो गई, सच को जरूर आना है। क्या ऐसी श्रद्धा विश्वास पक्का हो, निश्चय पक्का हो तो सतयुग जरूर आएगा। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। सतयुग में उत्तम पुरुष नहीं बनते हैं, सतयुग में उत्तम पुरुष होते हैं लेकिन बनते नहीं है। बनते कहाँ है? संगम युग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी कैसा मार्ग बन गया? प्रवृत्ति मार्ग तो है, अभी निवृत्ति मार्ग भी है तो पवित्र मार्ग भी है इस दुनिया में, लेकिन है कैसा? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अभी जो प्रवृत्ति मार्ग है वो पवित्र है, राधा की दृष्टि जैसे कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि जैसे राधा में डूबती है, ऐसे ही है, ऐसे है, पक्का है? किसी को अनुभव हो तो बताओ। बाबा तो कहते हैं घर घर में वह चल है, और कोई अगर कहता है कि ये तो बाबा ने झूठ बोला, हम नहीं इस बात को मानते, तो हाथ उठाओ। कोई नहीं कहेगा कि दृष्टि से वृत्ति से और कर्मणा से इस दुनिया में बिल्कुल अभिविचारी वृत्ति वाला कोई परिवार है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो संगम युग में, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अब नहीं हो। फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो, ये क्या बात हुई? 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो और बीच में क्या पवित्र ही रहते हैं? हैं? फिर ये क्यों कह दिया? तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, चलो मान लिया सत्य को त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो? 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो? 84 जन्म होने से पहले अपवित्र नहीं बन जाते क्या? ये सब अपवित्रता की बात हो रही है तो कौन सी बात हो रही है? व्यभिचारी की। तुम्हारी दृष्टि वृत्ति व्यभिचारी बन जाती है कब से? द्वापर युग से। लेकिन यहाँ तो बोला 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, ऐसे क्यों बोला? संपूर्ण व्यभिचारी, संपूर्ण व्यभिचारी का मतलब क्या है? 500 करोड़ के साथ व्यभिचार करेंगे तब संपूर्ण व्यभिचारी बनेंगे? संपूर्ण अपूर्ण व्यभिचारी क्या? व्यभिचारी माने व्यभिचारी? धर्म प्रधान स्टेज वाला व्यभिचारी? अरे व्यभिचारी हुआ तो व्यभिचारी हुआ, एक के अलावा अगर दूसरे से संसर्ग संपर्क होता है इंद्रियों पर तो व्यभिचारी कहा जाएगा। फिर वो एक बार व्यभिचारी हुआ तो वो तो बढ़ता ही जाएगा, कम थोड़ा ही हो जाएगा। कहेंगे तो चाहे एक से व्यभिचारी बने, चाहे दो से व्यभिचारी बने, फिर चाहे चार आठ दस से, फिर भी वैश्यावृत्ति तो कही जाएगी, लंपट तो कहा जाएगा। ऐसे भी राजाएं भारतवर्ष में हुए हैं द्वापर युग में, जिन्होंने कभी भी जिनकी दृष्टि वृत्ति व्यभिचारी नहीं बनी। दुर्गादास का नाम सुना होगा, मुसलमान स्त्रियां हाथ में आ गई, उनके राज्य पर जीत पा ली और फिर उनको वापस उनके घर भेज दिया, तो दृष्टि व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? तो क्या द्वापर युग में व्यभिचार हर राजा में हो जाता है क्या? नहीं। माना देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोक होता है, प्राय लोक होना माना पूरा लोक नहीं होता, फिर भी कुछ न कुछ कोई न कोई परमात्मा बाप के ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी दृष्टि वृत्ति और कर्मेंद्रियां व्यभिचार में आसक्त नहीं होती। अच्छा, अगर व्यभिचारी नहीं बनते तो फिर आप व्यभिचारी कैसे बनेंगे? तमो प्रधान नहीं बनते तो फिर सतो प्रधान कैसे बनेंगे? तो ये नियम बना हुआ है, फिर थोड़ा न थोड़ा अंतिम जन्म में आकर के नीचे अंधेरे में गिरना पड़े। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक सवेरा सवेरा नहीं हो सकता, तो अंतिम जन्म में हर आत्मा को जरूर नीचे गिरना पड़े। तो कुम शब्द जो बोला हुआ है, जरूर कोई ऐसी विशेष आत्मा है जिसके लिए बोला कि तुम 84 जन्म के बाद फिर व्यभिचारी बन जाते हो, अपवित्र बन जाते हो। इसलिए सिखों ने गायन है इस बात का, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये बात झूठ हो गई क्या? एक नारी से अपवित्र बने अथवा दो नारियों से अपवित्र बने, अपवित्र तो बने ना, है? क्या कहेंगे? समय के अनुसार कहा जाता है, सतयुग त्रेता में जो ट्रेडिशन है, जो चलन है, जो नियम है, उसके अनुसार वहाँ शेष इंद्रियों से आचरण होता है स्त्री पुरुष के बीच, दस इंद्रियों से आचरण नहीं होता, इसलिए उनको पवित्र कहा जाता है। और सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग से दस इंद्रियों से भी आचरण होता है, तो दस इंद्रियों से आचरण भल करने वाला है। और जितनी भी देवताएं आत्मा होती है 10 करोड़ के बाद, ऐसे करोड़ देवताएं गाये हैं, देवात्मा तो ऊपर से नीचे उतरती रहती है, हर धर्म की आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है कलयुग के अंत तक, ऐसे थोड़ी त्रेता के अंत तक 33 करोड़ उतर आते हैं फिर देवता धर्म की आत्माएं बंद हो जाती है उतरना, हर धर्म की आत्मा नीचे उतरती है। लेकिन उतरते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यभिचारी बन जाते हैं। तब देवी देवता सनातन धर्म अभी भी ऐसी आत्मा उतर रही है जिनमें अब भी विचारी वृत्ति है, दृष्टि भी अब भी विचारी और वृत्ति में वाइब्रेशन भी उनके अब भी विचारी नहीं बनते, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोक होता है, पूरा लोक कभी नहीं होता, कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा नाम मात्र को रहता जरूर है। तो इसलिए बोला तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, सामने बैठे वाले से ही बात की जाती है तुम कह करके, ये नहीं कहा ये पवित्र मार्ग वाला था फिर 84 जन्म के बाद ये अपवित्र बन गया, कौन है? ब्रह्मा। यह किसके लिए इशारा करते हैं? ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए नहीं कहा, मुरली में ये बात क्लियर की हुई है कि मैं तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ, ये बीच में तो लेता है, इसका मतलब काम किससे निकलना है? जो सामने बैठने वाला सन्मुख बच्चा है उससे काम निकलना है, ये बाजू वाले से काम पूरा होगा? बाजू वाले से होगा, बाजू वाले से काम पूरा होगा। ये मुरली जो है जब बोली गई है परमात्मा शिव के द्वारा, तो बाजू वाले के मुख से बोली गई है, ये प्रजापिता के मुख से बोली गई है। ये मुरली प्रजापिता के मुख से बोली गई है। ब्रह्मा मुख से गीता जो आई है ना, वो गीता ब्रह्मा मुख से आई। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, यानी गीता का जब मंथन हो, इंटरप्रिटेशन निकले और मंथन हो करके जब जो चीज निकले वो तो हुई गीता ज्ञान अमृत। लेकिन पहले क्या कहेंगे, शक्ति गीता। तो शक्ति गीता किसके मुख से सुनाई? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से जो भी गीता सुनाई तो उस समय कहते थे यह हमारे किसकी तरफ इशारा? या तो बाजू वाले लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा होता था, अथवा ब्रह्मा की तरफ इशारा होता था। अब तुम किससे कहते थे? जो बच्चे सामने बैठे हैं उनसे कहा जाता था तुम। इसलिए बताया तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बने। और कृष्ण के फॉलोअर कब से अपवित्र बनने लगे? द्वापर युग से। अब फिर तुमको पवित्र बनना है। कला पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कैसे आप पवित्र बने थे, फिर पवित्र भी बने थे और अपवित्र भी बने थे? कला पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो अब भी करेंगे। इस बात का पुरुषार्थ विविचारी से आप विविचारी बनने का, आप पवित्र से पवित्र बनने का। ब्रह्मा का मुख्य पुरुषार्थ है ही कौन सा? प्योरिटी, सिविलाई बनाना। जो क्रिमिनलाई बन गई है, क्रिमिनलाई को सिविलाई बनाना, यही ब्राह्मणों का मुख्य पुरुषार्थ है। इस मुख्य पुरुषार्थ के आधार पर ही बच्चों को राजाई का वर्षा मिलेगा। तब तक राजाई का वर्षा डिक्लेयर नहीं हो सकता, अपने आत्मा की स्मृति नहीं आ सकती, तब ही डिक्लेयर नहीं होगा। जब तक अपने को पवित्र नहीं बनाया, तो कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो ही करे और अपना वर्षा लेंगे। तो बाप साक्षी होकर के देखते रहते हैं, किस बात को देखते रहते हैं कि कौन इस समय कितना अभिविचारी बना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज में कौन पुरुषार्थ कर रहा है? अगर यही स्टेज है पक्की कि मेरा तो एक ही सहारा है, दूसरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, तो वो दूसरा सहारा ढूंढेगा क्या? दूसरा सहारा नहीं ढूंढ सकता। व्यभिचारी होगा तो दूसरा सहारा ढूंढेगा। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते ही नहीं है। माना इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट मैसेंजर पैसेंजर नहीं है, तो मैसेंजर और पैगंबर। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो परम नाम से आते हैं द्वापर युग में, कलयुग में, मोहम्मद वगैरह, वो मैसेंजर या पैगंबर नहीं है, है? वो पैगंबर नहीं होते क्या? वो बा क्यों नहीं होते? परम धाम में तो भेजने की बात ही नहीं। परम धाम में कोई परमात्मा से उनको कह करके भेजेगा कि जाकर के मेरा पैगाम दो, मेरी मैसेज दो? ये कहाँ की बात है? ये तो इस समय संगम युग की बात है कि संगम युग में तुम बच्चे आकर के बाप के मैसेंजर या पैगंबर बनते हो, पैगाम लेकर के जाते हो। सदगुरु सदगति करने वाला तो एक ही हुआ जिसका तुम मैसेज या पैगाम लेकर के जाते हो। पैगंबरों को कोई सदगुरु थोड़े कहेंगे सदगति करने वाला, मैसेज देने वालों को कोई सदगुरु थोड़े कहेंगे, वो तो सदगति करने वाले सदगति बाप का मैसेज लेकर जाते हैं। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो वो धर्म की स्थापना करने आते हैं, बाकी कोई खुदा का पैगाम लेकर के नहीं आते। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? पैगाम देने की, संगम ऊपर ये पैगाम देने की, परमात्मा बाप का मैसेज देने की ये शूटिंग होती। तो जो सिर्फ धर्म स्थापना करने आते हैं, सदगति करने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना करने आते हैं, अपनी धारणाओं की बुद्धि में स्थापना कर देते हैं, उनको फिर गुरु कैसे कहें? वो गुरु कैसे ठहरे? गुरु कौन? गुरु वो जो सदगति करे। मैं तो सबकी सदगति देता हूँ। कोई भी ऐसा मनुष्य शक्ति पर ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं बचती जिसकी मैं सदगति न करता हूँ। क्यों? जो सत्य त्रेता में आते हैं उन्हीं की सदगति होगी या सबकी सदगति होगी? जो सत्य त्रेता में आते हैं उनकी सदगति होगी या सबकी होगी? सदगति सबकी कैसे होगी? उनकी तो, उनको तो मुक्ति मिलती है। जो द्वापर कलयुग में उतरती है आत्माएं, उनको मुक्ति मिलती है या उनको सदगति मिलती है? फिर ये क्यों बोला सदगति होती है सत्युग में? हाँ, हर आत्मा के लिए पहला जन्म जरूर सत्य पार्ट बजाने का है। पहले जन्म में जो भी आत्मा उतरेगी परम धाम से, वो सत्य सत्य स्टेज में रह करके ही पार्ट बजाएगी, असत पार्ट नहीं बजाएगी। फिर संग के रंग में आने से नीची गति जिसमें प्रवेश किया वो तो तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान के संग का रंग लगने से फिर नीची गति। तो मैं सबको सदगति देता हूँ। 10 करोड़ जो सत्युग त्रेता में आने वाली देवात्माएं हैं उनको तो सदगति मिलती है, लेकिन द्वापर कलयुग से उतरने वाली जो और 13 करोड़ तो 23 करोड़ भारतवासी आत्माएं हैं उनको भी सदगति मिलती है। साथ ही साथ जो 5 करोड़ और मनुष्य आत्माएं हैं उनको भी एक जन्म के लिए सदगति जरूर मिलती। तो सदगति भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, एक जैसी सदगति सबको नहीं मिलती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नहीं।